भिक्षु गीता ये अंतिम श्लोक बोलते एकांश आस्था पढ़ा निष्ठा अभ्यास दान पूर्व समय महर्षि भी अहम परिश्रम तुरंत कारण तमो मुकुंदा की विषय विशिष्ट मेरे धनी ब्राह्मण उज्जैन हम ठीक है उनकी कथा है सार प्रभुपा जी प्रस्तुत करते थे। इस कथा को स्वयं भगवान कृष्ण कहे हैं अपने परम प्रिय भक्त उद्धव जी से। भगवान कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे थे तुम अधीर मत हो। उद्धव जी आग्रह कर रहे थे कि मैं इस जगत में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे पता हो गया है कि आप भौतिक जगत छोड़ करके अपने धाम में जाने वाले हैं। बहुत दुखी थे, भगवान से निवेदन की कि मैं साथ चलूंगा। तुम भगवान ने कहा नहीं हो, तुम कहो नहीं। सबसे प्रिय स्थान भगवान का पत्नी का आश्रम है तो वहां घूमना चाहते थे। भगवान ने कहा कि मैंने बहुत गंभीर उपदेश दिया है तुमको, मेरी इच्छा है कि पत्नी का आश्रम के मुनियों को यह सूचना है, इसका प्रसार करो। तो उद्धव ने कहा मैं आपके गृह में कैसे रहूंगा, हम नहीं सीखूंगा, तो कुछ उपदेश कीजिए हमको। तो भगवान ने कहा सबसे पहले प्रतीक्षा का उपदेश दिया, सहनशील बन करके रहो। यदि कोई तुम पर थूक दे या मूत्र कर दे दिल भी सहन, किसी व्यक्ति की बात से दिल मत हो, अपने मन को बैलेंस रखो, शांति से रहो। शांति से रहने से ज्ञान स्थिर रहेगा। तब उद्धव जी ने कहा कि आप बहुत मुश्किल का उपदेश कर रहे हैं, तो कठिन लग रहा है, कैसे असत पुरुषों के अतिक्रम का अवसर पाऊंगा। तो इसी के उत्तर में भगवान ने ये भिक्षु गीता को सुनाया है। भगवान कथा कहने लगे कि सुनो, मैं पूर्ण इतिहास कह रहा हूं। यह इतिहास सुनने से कोई व्यक्ति पवित्र हो सकता। एक बीज थे, ब्राह्मण थे, अंतिका में बहुत धनी, आज ढेर तमाम, लेकिन स्वभाव से बड़े क्रोधी थे, लोभी थे। थोड़ा सा धन खर्च हो जाता था उनकी इच्छा के लिए, बहुत क्रोध करते हैं, एक एक पैसा बचा करते रहते, कभी खर्च नहीं करते, परिवार के लिए या अतिथियों के लिए एक पैसा नहीं। अपने लिए भी नहीं खर्च करते, अतिथि आदि की बात तो दूर रहेंगे, अपने लिए भी कभी खाते नहीं थे, पहनते ठीक से नहीं थे, धन बहुत था। तो अकस्मात उनका धन नष्ट हो गया, कुछ ले लिया परिवार के लोगों ने, गोपिया ने, ज्ञाति ने, उसको डाकुओं ने लूट लिया, कुछ सरकार टैक्स बना करके ले लिया, और कुछ अपने परिवार के लोग हरा दिए, उनका धन नष्ट हो गया। धन नष्ट हुआ तो उनको बहुत निर्वेद हुआ, निर्वेद वैराग्य, बहुत दुखी हुए शुरू में, पर धन नष्ट होने से उनको बड़ा सुख मिला। उन्हें कहने लगे कि ये भगवान की दया है कि हमारा धन नष्ट हो गया। वे संन्यास ले गए, दिगंबरी संन्यास ले गए, और घर छोड़ करके, घर में कुछ था नहीं, घूमने लगे जहां तहां, तीर्थ में, नगर में, गांव में घूमने लगे, और भिक्षा मांग करके वृत्ति करते थे, भिक्षा मांग कर जीवन चलाते थे। तो बहुत से दुष्ट उनको सताते थे, कभी कोई उनके ऊपर पेशाब कर देता था। उस समय जब वे भोजन करने के लिए नदी के तट पर बैठते थे, प्रसाद खोले भिक्षा का अन्न खाने के लिए तैयार होते थे, तो उसी समय उनके ऊपर पेशाब कर देते थे, कोई उनके सिर पर थूक देता था। दुष्ट सब समय होते हैं, ये कथा स्वयं भगवान कह रहे हैं कि असत लोगों से दुनिया भरी हुई है, ये क्या पहचाने साधु को सन्यास। ये ब्राह्मण बड़े धैर्यशाली थे, नहीं बोलने का व्रत ले लिया, और दुष्ट लोग उनको बुलवाने के लिए अनेक उपद्रव करते थे, अनेक प्रकार से टैक्चर करते थे, कोई उनके त्रिदंड को लेकर के भाग जाता था, कोई चौपाती को, कमंडल को, कोई उनके जनेऊ को, पता था एक ही उम्र का है। और कभी कभी दिखाते थे तुम्हारा ये सामान है, कर देते नहीं था, बहुत तंग करके देते थे, पर वे ब्राह्मण कभी बोलते ही नहीं थे, सब सहते थे। इसीलिए इनका इनको कहा गया है, प्रभुपाद ने कहा कि भिक्षु ब्राह्मण, स्नान करने वाले ब्राह्मण। जब नहीं बोलते थे तो कहते थे कि चोर है, उसको बांधो बांधो, अरेस्ट करो और सरकार को दे दो, ये चोर है। अभी इसमें इतना ध्यान है कि हिमालय के समान हुए हैं। भगवान ने कहा है पिता में अस्थावरा नाम हिमालय, मैं स्थावरों में अचल पर्वतों में हिमालय हूं, तो ये हिमालय की तरह अचीव है, ये बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, अपने निश्चय पर दिया है, कुछ भी करते थे नहीं बोलते थे, अपने स्वधर्म में लगे हुए कि मैं ब्राह्मण हूं सन्यासी, मुझे अपनी स्वीकृति को भगवान में रखना है। कभी भी क्रोध नहीं करते थे, बुद्धि भी नहीं होते थे। क्रोध केवल इसी को नहीं कहते हैं कि पानी से कुछ कह दे या शरीर चला दे, हाथ चला दे, मन में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो जाना है क्रोध से होता है, क्योंकि मन में भी क्रोध नहीं है किसी से। कई दुष्ट लोग तुम दुर्वात अंति, दुर्वात अंति, उनके मुख पर अधोवायु त्याग देते थे, कुछ भी कर देते, कोई कोई टूटते थे डंडा से, पर कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं किया, कभी क्रोध नहीं आया। क्रोध न आना ये जीवन में सबसे प्रगति का चिन्ह है। किसी के प्रति कोई कितना भी हानि करे, जिस महात्मा में क्रोध नहीं होता है वह उतना ही ऊंचा है। क्रोध कभी नहीं होना चाहिए, क्रोध मेरे जीवन के प्रगति को रोक देता है। भगवान ने गीता में काम और क्रोध को तम तो हिस्सा परिपंथी नहीं कहा, परिपंथी कोई पंथ में जा रहा है और रास्ते में चोर डाकू पड़ गए, लूटने वाले बाधा देने वाले, रास्ते में कोई बाधा आ जाए तो उसको परिपंथी कहते हैं। ये काम और क्रोध इसके परिपंथी है, पैर न बस ना कुछ, इन दोनों के बीच बस में नहीं होना चाहिए। तो भगवान सुना रहे थे पितृपक्ष को आगे का इतिहास, वे क्रोधित नहीं होते थे बल्कि गुनगुनाया करते थे, बोला करते थे। एक प्रसिद्ध गीत और गीत मुझे याद नहीं है लेकिन है भारत में, उसी को बोला करते थे। उस गीत का आशय था कि हमको सुख दुख देने वाला कोई नहीं, कुछ दुख देने वाला कोई नहीं है, मन ही दुख सुख का हेतु है। गाते रहते थे, लोग सताते थे, घोर जाड़ा हो, घोर जाड़ा में उनका कंबल लेकर भाग जाते थे, और गर्मी में उनको कहते थे पेड़ की छाया में जगह नहीं है, तुम हटे यहां से जाओ, धूप में बैठते थे, सब कष्ट सहते थे। लेकिन वही गीत गाते रहते थे, मेरे सुख दुख का कारण कोई नहीं है, ग्रह नहीं है, काल नहीं है, कर्म नहीं है, मेरे सुख दुख का कारण केवल मन है। मन में मान लेता है व्यक्ति की इससे हमको दुख हुआ है, इससे सुख मिला है, मन ही बना लेता है सब। तो इसको गाया करते थे, सुखी थी और स्वधर्म में लगे हुए इस गीत को गाते थे। अंतिम श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं, एकां स आस्था परात्मनिष्ठा। इस प्रकार युद्ध देवता एकां परात्मनिष्ठा, इस प्रकार से परमेश्वर की निष्ठा में भक्ति में लगे हुए थे। एकां से आस्था है परात्मनिष्ठा, अभ्यासितां पूर्व तमय महिष्मि। जिस निष्ठा में भगवान की भक्ति में पहले के महाऋषियों ने दृढ़ता से अवगाहन के लगे रहते, उसी में लगते भगवान की भक्ति में संसार में क्या दुख है सुख है इसका ध्यान नहीं है। ये कहते हैं अहम परिश्रम दुरंत कारण, दुरंत कारण जिसको पार करना अतिशय कठिन है, ऐसे अज्ञान समुद्र को तमह अज्ञान को मैं पार कर जाऊंगा कैसे। मुकुंदांग भी निसेवाया ही श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के द्वारा मैं पार कर। तो यही है संन्यास। भगवान गीता में कहते हैं सन्यासी जो योगी है न निरग्नि बच्चा के लिए, प्राय ऐसा समझा जाता है कि जो निरग्नि है भोजन से बदलता है और कोई काम धंधा नहीं करता है उस योगी है वो सन्यासी। लेकिन भगवान कहते हैं कि केवल भोजन छोड़ देने से नहीं बताने से कोई संघर्ष नहीं है, योगी नहीं है। जो कार्यम कर्म करते जो करने जो काम करता रहता, शास्त्रों में कई कार्य हम बताए गए हैं करना चाहिए। सबसे बढ़कर है भगवान की भक्ति। श्री प्रभुपाद जी मिसिसिपी में गए थे, वहां वो किचन में सबसे पहले गए मंदिर के किचन में, और उन्होंने यही उस वक्त बैठते हुए प्रसाद बनाना चाहिए निष्क्रिय नहीं होना है और निरग्नि नहीं होना है, भोजन पकाना है भगवान के लिए भक्तों के लिए। ये करने लायक काम है, अगर सभी निरग्नि हो जाए तो ये समारोह का फेस्टिवल कैसे होगा। जब नियम लगे कि हम आग नहीं चला रहे भोजन नहीं निर्वाह नहीं है। कार्यम कर्म करो तो जो कार्यम कर्म करो करने योग्य जिन कर्मों का उपदेश शास्त्र में है उन कर्मों को जो करता रहता है ससन्यासी से योगी चल वही सन्यासी है वही योगी है जो क्रिया में रहता है लेकिन व्यर्थ क्रिया में नहीं करने जो कार्य में रहता है भगवान के प्रचार में रहते हैं गुप्त सूचना में। यदि भक्तों के मन में हो जाए कि हमें पैसा नहीं तो कैसे चलेगा तो संस्था का प्रवाह कैसे होगा, किसी भी संस्था में ऑफिस चाहिए पुस्तक चाहिए भक्तों के मेंटेनेंस के लिए चाहिए और कैसे मिलने कोई व्यवस्था रहेगी पहले ना, और व्यवस्था में मूल है लक्ष्मी पैसा आएगा कभी नहीं, तो कार्यम कर्म है करने लायक कार्य जिससे पैसा आता रहे और भक्तों का पोषण हो भगवान का कीर्तन हो भगवान की कथा हो। ये कार्यम कर्म है तो इसी कर्म में लगे रहना है, सन्यासी वही योगी वही है भगवान वाले सन्यासी च योगी चाह न निरग्नि से चाहते हैं निरग्नि या अप्रिय निष्कर्म चाहने वाला काम नहीं करने वाला है ये योगी का लक्षण नहीं है। सीधा भगवान कहता है कि जो मेरी सेवा में लगा है भक्ति जीवन वही सन्यासी है। इस काम में प्राय जो ब्रह्मचारी है मैं भक्त हूं ये सभी सन्यासी सन्यास के ही पथ पर चल रहे हैं। भगवान के कथनानुसार जो व्यक्ति भगवान के मंदिर की सफाई कर रहा है कार्यम कर्म कर रहा है करने लायक है, नहीं करने लायक काम जो चोरी करना है चार वर्ष में बैठे रहना ये नहीं करने लायक काम है। करने लायक काम है भगवान की आरती में भाग लेना, मंदिर की सफाई करना, भक्तों को प्रसाद देना, भगवान के बगीचे की सिंचाई करना जिससे फूल उत्पन्न हो, भगवान का अर्पण किया जा सके। ये सब करना चाहिए, करने लायक काम है। तो इस प्रकार से करने जो कामों में जो लगा हुआ है ससन्यासी चाहे योगी चाहे वही सन्यासी है वही योगी है। मन रखने को क्या क्रिया ऐसा नहीं है कि आग नहीं जलाने से सन्यासी हो जाए या योगी हो जाए। आग नहीं जलाने का मतलब है कि भोजन नहीं बनाने से प्राय सन्यासी योगी मान करके खाते हैं। बहुत अभिमान होते हैं कि मैं कभी बनाता नहीं हूं, बनाते नहीं हैं लेकिन पेट को भरते हैं। जरूर एक सिद्धि है कि भोजन न बनाया करें, अपने आप भोजन नहीं मिले। लेकिन स्नान में प्रभुपाद जी ने सिखाया है सबको भोजन बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए, खाने में नहीं। हम सब डिस्ट्रीब्यूट बुक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम। प्रसादम कैसे बांटा जाएगा, तैयार हुआ तभी ना। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम, प्रसाद बांटना है। इस काम में जो लगा हुआ है वो सन्यासी ही है, भगवान का विचार है। सब मिलाकर के यही सार है सन्यास का कि भगवान की सेवा में व्यक्ति लगा है। मुकुंद डांगरी निश्चय यही मुकुंद के चरण कमल की सेवा द्वारा मैं इस तुरंत संसार अंधकार को पार कर जाऊंगा। संसार अज्ञान का समुद्र है, जो तुरंत पार है, उसका पार पाना है। इस किनारे से उस किनारे चले जाना है बड़ा कठिन है। लेकिन इससे अलंग महासागर को मैं श्री कृष्ण के चरण सेवा पर पार कर रही हूं। मुकुंद सेवया है, मुकुंद चरण की सेवा कर, मुकुंद के शरण कमल की सेवा कर रहे हैं। हम परिश्रमी मैं कार्य कर जाऊंगा। इतना घोर अंधकार है, ज्ञान है इस जगत में। सबसे बड़ा अज्ञान है कि अपने स्वरूप का कुछ पता नहीं, और जो हम स्वरूप नहीं है फालतू चीजें हैं उनमें मैं विधि करती हूं। मैं दे हूं, मेरा सम्मान होना है, मेरा अपमान होना है, मेरा मेरा पिता है, देह को मेरा मानना है, देह को मेरा मानना है, मेरा घर है, मेरा आश्रम है, मेरी जमीन है। यह बहुत बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान को मैं पार कर रहा हूं मुकुंद के चरण कमल की सेवा से। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा वो निश्चय ही अज्ञान समुद्र को पार कर सकता है। यही है संन्यास धर्म, यही है सेवा, मुकुंद के चरण कमल की सेवा। सन्यासी बनने पर ये विचार नहीं करना चाहिए कि मैं उत्कृष्ट हो गया, दो सीढ़ी आगे बढ़ गया, ऐसा सोचना तो और नीचे गिरने का भाव। अधिक नम्र होना चाहिए, अधिक पीछे होना चाहिए। भगवान स्वयं बताए हैं कि न गति सुनी सुना करो दिवस सुना अमान्य न मान देना फिर और सदा क्या करना चाहिए ठीक है।
हरे कृष्ण
सदा करने लायक काम है कीर्तनी और सदा हरि सदा कीर्तनी है। तुम्हें कहते उन्हीं की कीर्ति का प्रधान करना चाहिए, उन्हीं का नाम जपना चाहिए। यही भगवान का और एक विधि बात कही है कैसे हम भगवान का कीर्तन सदा कर पाएंगे, उसकी विधि बता रहे हैं। पीला पति सुनी चुना जब रास्ते में पड़े हुए तुलके से भी अपने को दुष्ट समझेंगे, घास का टुकड़ा रास्ते में पड़ा रहता है, कोई इस पर पैर देता है, कोई थूक देता है, हवा आपका झोंका आता है उसको उड़ा लेगा, पर कभी घास उठ करके प्रतिवाद नहीं करता कि हम पर क्यों लाती है, हम पर क्यों थूका है। उससे भी ज्यादा नीच बन करके नम्र बन करके रहना तब हम कीर्तन कर पाएंगे। पिलात अपि सुनिच में सुनिच मतलब नम्र यदि भक्त सब प्रकार से बहुत बड़ा होता है लेकिन भावना उसकी होती है कि मैं दीन हूं, मैं नीच हूं। जो अरायल गांव है प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु गए थे और एक बहुत वरिष्ठ आचार्य बल्लभाचार्य वो रहते थे और जब अभी गोस्वामी थे और अनुपम उनके भाई से वे आलिंगन करने के लिए चले बल्लभाचार्य, तो वे लोग पीछे आ गए, पीछे आ गए कि हमें छुए बैठा छुए नहीं, हम मेरे छुए से छुए लायक नहीं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक करते हैं भाग गए आप जैसे कभी तो आचार्य छुए नहीं स्पर्श नहीं। ये नीच है आप इनको मत छू। स्वयं भगवान आचार्य को कह रहे हैं कि आप मत छू इनको, अच्छा किए भाग गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न थे कि अपने को नीच समझ रहे गुरु गोस्वामी और अनुपम। इस तरह से श्रेष्ठ होते हुए भी अपने विमुक्त भावना है चाहिए, मैं छोटा हूं मंदिर चाहिए और करोड़ दिवस सहिष्णु वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। कई भक्त पाठ भेद करते हैं करोड़ों वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए, वृक्ष से ज्यादा हो नहीं सकते पाठ मूल है तरो दिवस तरु की तरह सरसों वृक्ष कितना सहता है, सर्दी गर्मी धूप सब में खड़ा रहता है और पानी के बिना सूख जाता है, प्यास से मर जाता है, लेकिन किसी से पानी मांगने नहीं जाता। कभी कोई वृक्ष पानी मांगने गया और अपने पास जो भी धन है वो देता रहता है, छाया देता है और पत्र देता है, अपना धन पुष्प देता है। भगवान की सेवा में वृक्षों के प्रोडक्ट लगाए जाते हैं, वृक्ष के पत्ता को उनको फल को अर्पण करते हैं। इसी से भगवान अपनी सेवा में यही मांगते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो योगी भक्त अप्रेक्ष। यदि कोई भक्त प्रेम से मुझे पत्ता देता है, पुष्प देता है, फल देता है और जल देता है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। सारे जगत के महान ईश्वर बहुत बड़े परिश्रम में है, फिर भी इतनी छोटी छोटी चीजों को कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं, मन देता हूं। तो मैं लीला में दिखाया कि किस प्रकार वे भाव स्वीकार करते हैं। माता शिवरी के आश्रम में गए थे और फल बासी तोड़ तोड़ करके रखती थी, मीठा जाकर भगवान उसे खाने बहुत प्रेम से खाए, बहुत भूख लगी थी, पके थे, सीता की खोज में और मांग मांग कर खा रहे थे और लोग दो माता जी और दी। ऐसा स्वाद तो मुझे जनकपुर में भी नहीं मिला, अयोध्या में नहीं मिला, इतना स्वाद आपके फल में देर में जूठे दे मांग मांग कर पत्र। पत्र में तुलसी पत्र तो प्रसिद्ध ही है, बिना तुलसी के भगवान कोई भी भोज्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते। तुलसी का जब स्पर्श होता है तब स्वीकार करते। इसी प्रकार से हमको अपना दास माने जब तुलसी कंठी रहे, और कुछ नियम है भगवान अतः अवश्य ही कंठी धारण करनी चाहिए। विदुर जी के यहां जो अछूत माने जाते थे, भगवान अपने आप चले गए थे संगीत उत्पन्न कर हस्तिनापुर, और विदुर जी एक उपेक्षित व्यक्ति थे, इतने बड़े विद्वान भारत धृतराष्ट्र को बहुत नीति सिखाए, लेकिन उनको निकाल दिया गया था, दूसरे धन ने अपमान करके निकाला। जब भगवान समझी दुख बन करके गए उस समय राज दरबार में नहीं आते थे, अपने घर पर थे। उस दिन ऐसा प्रश्न वो कहते हैं कि एकादशी थी जो भगवान गए थे समझ दुख बन कर, आज की तिथि माधव तिथि। जब घर पर कुछ था नहीं, भोजन नहीं बनाया जाता, केवल केला कुछ रखा हुआ था, तो भगवान हुआ पुआ पकड़ते हैं गए। कुंती के नाते से विदुरानी जी को भी अपनी बुआ मांगते थे, भूख लगी है कुछ कृष्ण जी स्नान कर रहे थे, कृष्ण की आवाज को पहचान दौड़ी हुई आई। उसकी भगवान देखे कि ये स्नान कर रहे हैं तो अपना पीतांबर डाल दिए उनके पेश पर, उनके लज्जा को बचाने के लिए। ऐसा मैं सुना हूं कि तो प्रेम में भीड़ हो रहे थे, उसके बाद बैठाना है, बैठने के लिए चौकी लाई, छोटी चौकी, बहुत बड़ा आसन है, चौकी समझते हैं छोटी चौकी, और लाई तो उल्टा घुसा प्रेम में, और दोनों हाथ पकड़ करके बैठा है। भगवान भी उल्टी चौकी पर बैठ गए, कहते थे बहुत दुख लगी है, बहुत भंडार छोड़ करके आए थे, 56 प्रकार का भोग बना था, कुछ घंटे वहां से चल रहे थे, और जहां भोजन की कोई तैयारी नहीं थी, रात की तरफ चल रहा था, वहां आकर के कहते हैं हमें तो फल था केला, वही भी दुकानी लाकर के रखा, प्रेम बस छिलका निकालते थे, केले का जो सार भाग है उसको फिर ध्यान में केला को केला का छिलका दे रहे और भगवान उसी को खा रहे हैं। जब पुदू जी घर पर पहुंचे तब देखते हैं तब जानते हैं ठीक है, भगवान कहते हैं कि सीखे में ज्यादा स्वाद आए तो अपनी लीलाओं में भगवान ने सब दिखाया है। गजेंद्र जब भक्त को लेते कहा उन्होंने कृष्ण को सिखाया भगवान आ गए आकाश में गरुण जी को चय थे, चूंकि पूजा करने का स्वभाव था तो सुंदर गजन में प्यार पा कर तो उस सरोवर में बहुत कमर्थ कर गए थे, कुछ भर गए थे दूध में, तो उखले हुए कुछ कमर को इकट्ठा करके गजन का पीछे लेकर जिन भक्तों को यह स्वभाव होता है भगवान की पूजा करने का करते ही है, तो एक दिन श्री कृष्ण स्वीकार करेंगे आपकी पूजा करने के लिए, हमें कुछ न कुछ फूल अर्पण करने हैं, भगवान पुष्प स्वीकार सभी का फल स्वीकार किए, कुछ का फल स्वीकार, द्रौपदी जी का पात्र संख्या। जब महाराज की दृष्टि उत्पन्न होगी बर्वास पर उनको तंग करने के लिए जब हम दुर्वासा नदी को ध्यान जाए समय उनका अति स्वीकार सौभाग्य से और साधु ढेर में पड़ गया जो दुल्हन विचार नहीं थे 10,000 शिष्यों को इकट्ठा करके चला गया कौन में महाराज ऋषि का पता था और महाराज का स्वभाव किसी ग्रामों को अतिथि को आभास नहीं करते उन्होंने जब दुर्वासा मुनि को देखते आराम किए सभी भाइयों ने आराम किया तत्काल कह दिए आप हमारे यहां भोजन करें तो उसी की दे गए उनको बड़ी खुशी हुई महाराज के यहां भोजन होगा लेकिन भोजन का समय बीत गया अक्षय पात्र में जो पकाया है अंत में दो कुछ ने खा गए तो उसके बाद उस दिन उसमें दूसरा भोजन नहीं बनता केवल एक बार भोजन बनता था वो चाहे जितने आदमी को परेशान है जब महाराज जी की हिस्ट्री में मैच कर दिए मुनिया को दुर्भाषा मुनि के तल को उसके बाद महारानी द्रौपदी से भी पूछते हैं मैं उनको निमंत्रण दे दिया ब्राह्मणों को मंडली को अब भोजन की व्यवस्था करो द्रौपदी जी ने कहा मैं तो खा चुका हूं कुछ नहीं है तो नारायण ऋषि ने कहा कि मैं तो निमंत्रण दे दिया हूं कुछ उपाय करो इतना कहकर तो उन्होंने कहा कि अब उपाय कुछ नहीं है सुधारता देश के पिता तो बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है अगर दुर्भाषा मुनि को भोजन नहीं मिले तो वे साफ से भ्रष्ट करती है यही निमंत्रण देकर तो भोजन नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा तो द्रौपदी को काटने महाभारत में लिखा गया विभिन्न द्वारकावासी हे द्वारकावासी मुनि ऋषि महाराज ने कहा कि कृष्ण तुमसे अधिक स्नेह करते हैं व्यावास तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा द्रौपदी ने प्रार्थना किया और भगवान आ गए तो अति भूखे के रूप में आते हैं कहने वाले उसमें मुझे भूख लगी है सबसे पहले मुझे बदला द्रौपदी बार बार कहने में मैं खा चुकी हूं बर्तन में कुछ नहीं है तो भगवान यहां तो कहें मुझे परिहास नहीं अच्छा लग रहा है देर है कुछ तो होगा बर्तन में लाओ बर्तन लाओ अक्षय पात्र लाओ कुछ तो होगा देखते करते भगवान ने ध्यान से देखा एक पथुआ का पत्ता सूटा उस पत्ता को लेकर भगवान खाए पत्रकार और कहा भीम कि अब चाहिए बुलाइए इसलिए तो अच्छा लोग चले गए नहीं आए क्या बुलाना है विपत्ति क्या करनी है कुछ खाने को भगवान का नहीं आप जाकर बुलाइए भगवान के पेट भरते ही सारे जगत का पेट भर गया सभी लोगों का भीमसेन गए सरोवर जहां स्नान करने के लिए गए थे तो पूछते हैं वहां के वासी निवासी मिले यहाँ कोई साधु संताए थे बहुत जोर से पूछने लगे कर कहीं पता नहीं लगा और जो निवासी मुनि थे यहाँ आए थे कुछ मुनि लेकिन पता नहीं कहाँ चले उनके स्नान करने से पिछले कपड़े तो निचोड़े गए थे सबको पता लगा भीमसेन को ये पुकारते थे हे मुनिराज हे दुर्वासा मुनि आइए कहाँ कहीं असल में जब पेट भर गया मुनियों का बहुत सुंदर टकार आ रहे सब बड़े आश्चर्य से देखने लगे दुर्वासा शिष्य लोग देखने लगे अकस्मात पेट क्यों भर गए हम लोग आए थे हरल खाकर राजा जी भीष्म के हाथ प्रसाद खाना एक पेट क्यों भर गए दुर्वासा जी समझाए भीष्म महाराज भगवान के परम भक्त है अब इतना भोजन के बाद हम उनको तंग करें इसके साफ बर्बाद हो जाएगा कौन खाएगा मैं समझ रहे ये सब कुछ नहीं मिलता है इनको याद आया कि अब पेट भर गया अब गर्दन कटेगी अब सुदर्शन आ रहा है सब लोग जहां गृहस्थ मुझे भाग पूरा भागो कोई पश्चिम भागो जहां भी जगह मिले भाग ये भाग मत तो चक्रा करके सबको तो सब ऋषि मुनि भाग कोई आकाश में उड़ कर कोई पश्चिम गए कोई पूरे गए कोई नहीं मिला कोई नहीं था भीमसेन पुकार रहे कोई रहे तब तो मिले कोई था ही नहीं उसकी भूमि पर नहीं था भाग रहे पुकारते हैं अंत में निराश होकर के आकर के कहे तो वहां तो एक भी कोई नहीं तो भगवान ने समझाया कि भीष्म महाराज को प्लान था तो आप लोग विनाश कर आपके धर्म ने आपकी रक्षा की एक अश्रीम भागवतम में है उन्होंने साग का पत्ता खाकर तीनों लोग को तृप्त कर दिया अर्जुन इस कथा को कह रहे हैं इस प्रकार भगवान ने आचरण में अपनी लीला में ये सब दिखाया पत्रम पुष्पम फलम स्वीकार करता स्वयं स्वामी दिलीप की लीला को अम्बरीश ने आनंदी देव महाराज के व्यवहार में विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे प्रेम से दिए हुए उपहार को जरूर चाहे पानी हम अर्पण करें फूल पत्र जरूर स्वीकार करें स्वीकार नहीं करते तो अपने श्रीमुख से क्यों कहते मैं स्वीकार करता हूं स्नान में इसीलिए मैं बोले कि लोगों को अर्पण करें किसी उनकी इच्छा नहीं होती तो कह देते हमें कोई कुछ देता है तो मैं ग्रहण नहीं करता। भगवान ने कहा कि मैं ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, किसी भी एक भक्त कोई भी व्यक्ति हमको देख रही है, उनको कोई अभाव नहीं, संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण है, लेकिन फिर भी स्नेह करते हैं जीव से, वे चाहते हैं कि हमको देने के लिए संपर्क करें। जब कोई जानेगा कि भगवान स्वीकार करते हैं तो कितना प्रेम से देगा। तो यही है संन्यास, भगवान की सेवा करना। जैसा हमने कहा था कथा में, जैसे बाधेन तकलीफ है, भगवान की सेवा के लिए इतना तत्पर थे और अपने खाने के विषय में अयाचित वृत्ति थी, कभी मांगते नहीं थे। खीर खाने की तनकी इच्छा हुई तो केवल स्वाद करने के लिए भगवान कैसे प्रसाद करते हैं इसको भी अपराध मान लिया, और भगवान ने भी इच्छा को पूरा किया। आदर्श सन्यासी भगवान की सेवा के लिए मलय पर्वत वहां से चंदन लेकर अनेक बाधा की, कई घाट हो रहे थे जहां टैक्स देने पड़ते, लेकिन सब करते हुए मेरे दर्शन से उस चंदन पर लाए भगवान को शिकायता करने के लिए। तो सन्यासी भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए परिश्रम कर रहे और अपने नियत वृत्ति के लिए भगवान का प्रसाद खाने में भी संकोच है। और कृष्ण प्रभु तो बहुत छोटी अवस्था से ही भगवान की सेवा में लग रहा है, सब प्रकार की सेवा। तो आज वे औपचारिक संन्यास ले रहे हैं, बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उन्हें अवसर मिला है। इस्लाम के संन्यास मिनिस्ट्री ने कहा है तो इनकी इच्छा थी कि मायापुर में इच्छा हो जैसा इस्लाम में किया जाता है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि लाया तो नदी गंगा जो है हरिद्वार में भी, तो हरिद्वार में जाना ही है कथा के लिए, तो वहीं संन्यास करते हैं। मैं सोचता था कहीं गंगा जी के किनारे एकांत घाट में मंत्र दे दूंगा, नाम दे दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि इतना जन समुदाय मेरी धारणा नहीं थी कि संन्यास में इतने आदमी जुटते हैं। तो संन्यास है क्या हमारे यहाँ जुड़ना है, पर इसके लिए एक उपयोगी है यह कि संन्यास देकर प्रत्येक भक्त को ऐसा जीवन जीने का संकल्प करें। जय जय। भगवान की भक्ति में त्याग होना ही चाहिए, दीक्षा होनी चाहिए, सहनशीलता शक्ति भी जरूरी है। इसीलिए सबको सीखना चाहिए भगवान की भक्ति में आत्म इंद्रिय की सेवा त्यागनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। यह स्थान गंगा जी का किनारा स्पेशल महत्वपूर्ण है, इसको सप्तस्रोत कहते हैं। यहाँ गंगा जी सात ऋषियों के आश्रम से सब रहते हैं, सात धारा में, इसीलिए सप्तस्रोत कहते हैं। सात ऋषि जो एक मनोन्तर में रहते हैं, इन ऋषियों को प्रताप किया गंगा जी ने, परम पावन ऋषि जिसने अपनी मुनि भी है, गौतम जी और भृगु जी, भगवान गीता में कहते हैं महर्षि हम भृगु हैं, मैं महर्षियों में भृगु हूं। भगवान अपनी विभूतियों को गिनाए हैं दसम अध्याय में गीता में। जब किसी दल के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसमें जो गुण होते हैं असल सभी अन्य के गुण उसी में रहते हैं। तो भगवान विभूति गुना रहे हैं कि मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मुनियों में भृगु हूँ, भागवतों में उद्धव हूँ, भागवत में गुण है। मैं जादुओं में भगवान हूँ। तो प्रधान व्यक्ति का नाम आ जाने से उसके अंदर सभी आ जाते हैं। मैं पक्षियों में गरुण हूं, हम सभी पक्षियों में जो विशेषता है वो गरुण जी में है। गीता में कहते हैं मेरु शिखराम, मैं शिखरियों में ऊंचे ऊंचे शिखर वाले पर्वतों में मेरु हूं, और स्थावरा नाम हिमालय, स्थावर अधिक रहने वाले पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस स्थान पर भृगु जी रहे हैं, अत्रि मुनि रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र है, बहुत पवित्र स्थान है। गंगा जी के किनारे में लोग आते, गंगा जी कृपा करते हैं कि आश्रम से सेट करके बहते, जितने मुनि थे उतनी धारा में, अभी भी गंगा जी की धारा है यहाँ, कई धारा में। तो एक आपसी तिथि है, गंगा जी का तट है, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का। अब सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोग जितने वैष्णव के बीच में है सबका दर्शन हो रहा है। जय श्री राम।